शाम करीब 8 बजे अमर जानवी को चाय पकौड़े खिला चुका था और उसके बाद वे वापस बालकनी में बैठे थे। अमर ने दोनों पर एक हल्की सी शॉल डालते हुए कहा, बच्चा अगर तुम चाहो तो अब शेयर कर सकती हो कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, क्यों रो रही थी। जैसे मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मानता हूँ तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी मैं अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूँगा। जानवी ने अपना चेहरा अमर की गर्दन में रब करते हुए कहा, नहीं अमर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हस्बैंड हैं। मैंने आपके जितना अच्छा इंसान अपने लिए तो कभी नहीं देखा है। और मैं, बोलते बोलते वो रुक गई क्योंकि उसका गला भर आया था। अमर ने दूसरे हाथ से आहिस्ता से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ तुम? जानवी ने दर्द का घूंट भरते हुए कहा, मुझे ताई जी ने कॉल किया था। जानवी का इतना कहना था कि अमर के जबड़े बुरी तरह कस गए। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। मीनाक्षी में इतनी हिम्मत कि वो उसकी बीवी को तंग करे, ये उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। पर अमर जानवी की आगे की बात सुनना चाहता था, इसलिए वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, हाँ तो क्या हुआ? जानवी का निचला होठ हल्का सा बाहर निकलते हुए कांप रहा था, जैसे वो खुद को रोने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी उसके होठों से हल्की सिसकी निकल गई। उसने कसकर अमर को अपने गले लगाते हुए कहा, उन्हें लगता है मैं त्रिशा दी को यहाँ नुकसान पहुँचाऊंगी, क्योंकि मुझे आप और आपकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चाहिए। मैं उसे बांटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो त्रिशा दी से कभी कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपनी भरी आंखों से अमर के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या आपको भी लगता है कि मैं इतनी लालची हूँ कि पैसों के लिए अपनी बहन को चोट पहुँचाऊंगी? फिर उसने अपने आंसू खुद ही पोंछते हुए कहा, माना एक माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है तो उसकी फ़िक्र लगी रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब लोगों को बिल्कुल दर्द नहीं होता है। क्या उन्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है? मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि वो त्रिशा दी को छोड़कर मेरी फ़िक्र करें, लेकिन कम से कम मुझे इंसान तो समझें। अमर ने पहली बार जानवी को किसी के खिलाफ बोलते सुना था। ये महसूस कर उसके होठों पर स्माइल आ गई। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी बीवी स्ट्रांग तो बन रही थी। अमर ने अपना हाथ उसकी कमर पर ले जाते हुए उसे और टाइटली हग करके कहा, तुम्हें काम करो, उनके नंबर ब्लॉक कर दो। उसके बाद भी अगर वो तुम्हें परेशान करें तो मुझे बताना, ठीक है? अगर वो तुमसे मिलने को कहें या तुमसे कोई भी झूठ बोलें, तुम्हें मनाना नहीं है। जानवी ने कन्फ्यूजन में कहा, झूठ बोले? अमर ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, मेरा मतलब है अगर वो तुम्हें कभी भी मिलने के लिए बुलाएं, कोई झूठी कहानी सुनाए, तो उनके पास जाना नहीं, पर ऐसा होगा कि मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। जानवी को ज़रा भी समझ नहीं आया कि अमर क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने हाँ बोलते हुए कहा, मैं उनके नंबर ब्लॉक कर दूंगी और उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। ये सुनकर अमर के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और उसने जानवी को फिर अपनी बाहों में उठाते हुए कमरे के अंदर ले जाकर बेड पर बैठते हुए कहा, अब तुम फ्रेश हो जाओ, आज डिनर भी मैं ही बनाऊंगा। तो मैं डिनर की तैयारी करता हूँ, तब तक तुम रेडी होकर आ जाना, ठीक है? जानवी ने जल्दी से कहा, मेरे लिए स्नैक्स बनाए वो ठीक थे, लेकिन सबके लिए खाना आपके बस की बात नहीं है, मेड है ना, वो बना देंगी। आज कल से मैं फिर बनाने लग जाऊंगी, मुझे फर्स्ट डे को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अमर ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मैंने जो चाय और पकौड़े बनाए थे वो तुम्हें पसंद नहीं आए? जानवी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो अमर ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहा, हाँ तो फिर मुझ पर विश्वास रखो, खाना भी मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा। इतना बोलकर उसने आगे बढ़कर धीरे से जानवी का माथा चूमा और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। जानवी अपना फोन उठाकर मीनाक्षी के नंबर को देखती है और फिर उन्हें ब्लॉक करते हुए गहरी सांस लेकर बोलती है, शायद अमर सही बोल रहे हैं, मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर उठकर बाथरूम के अंदर चली गई। वहीं बाहर अमर किचन में जाकर किसी को कॉल करते हुए बोला, तुम्हें एक लेडी की फोटो भेज रहा हूँ, कल तक उसके हाथ पांव सब टूट जाने चाहिए। हाँ, और मरने नहीं चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए, और उसे बता जरूर देना कि तुमने उसे क्यों मारा है और किसके कहने पर। इतना बोलकर अमर उस आदमी को कुछ समझाने लगा और उसके बाद कॉल कट करके एप्रन पहनते हुए खाने की तैयारी करने लगा। कहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अब 9 बज चुके थे, लेकिन माही का आधा काम भी नहीं हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे अपनी बेबसी पर। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल चलकर इतनी ज़्यादा थक चुकी थीं कि लग रहा था कुछ पल और काम किया तो उसकी उंगलियों में छाले हो जाएंगे। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए कहा, गॉड कहाँ फंसा दिया आपने, इतना कौन सा बड़ा काम कर दिया है मैंने जो सारी मुसीबतें आप मेरे कर ही मर देते हो। इतना बोलकर उसने रुमाल से अपनी आंखें पोछी और फिर एक पानी का घूंट भरते हुए वापस अपने काम पर लग गई। दीक्षांत पॉपकॉर्न खाते हुए लैपटॉप से माही की हर हरकत को देख रहा था। वो बिल्कुल किसी टीवी शो की तरह माही के इस कंडीशन को एंजॉय कर रहा था। उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है मिस माही। तुम्हें हर काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि तुम किसके लिए कर रही हो और क्यों कर रही हो। उससे सामने वाले को क्या नुकसान हो सकता है और वो नुकसान तुम पर कैसे भारी पड़ सकता है। इतना बोलकर दीक्षांत जोर जोर से हंसने लगा।